आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की सत्य सनातन धर्म की श्री काशी विश्वनाथ महादेव की ओम नमः पार्वती पते हर हर महा। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, आज ग्रहण भी है, रक्षाबंधन, श्रावण मास पूर्णिमा के हिसाब से मानने वालों के लिए आज श्रावण का अंतिम दिन है। अमावस्या के हिसाब से चलने वाले के लिए 21 तारीख तक रहेगा श्रावण। उस हिसाब से भगवान कृष्ण का जन्म भादो में भी हुआ और श्रावण में भी हुआ ऐसा माना जाए तो, क्योंकि 14 तारीख को उत्तर वालों के लिए भादो होगा और जो अमावस्या के हिसाब से चलते उनके लिए श्रावण होगा। भगवान कृष्ण सोचते होंगे हमारे लिए बढ़िया जन्मदिन है भाई, जन्मदिन एक ही है लेकिन महीने दो हैं, श्रावण और भादो। आज रक्षाबंधन 11:07 तक भद्रा है। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं मानते, इसीलिए रक्षाबंधन 11:08 के बाद से लेके पूरे दिन कभी भी हो सकता है। जो अनियत काल वाले पर्व हैं उसी में सूतक लगता है, उसी में कुछ भी लगता है। ये जो रक्षाबंधन ही नियत काल है, निश्चित पूर्णिमा के दिन ही होता है, बाकी दिन में नहीं होता, इसलिए इसमें सूतक आदि भी नहीं लगते, तो ये पर्व मनाया जा सकता है। बाकी सब अपने अपने पंचांग खोल के जिसको जैसा अनुकूल ऐसा मुहूर्त निकाले हैं। तो आज बड़ा अच्छा दिन, श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन का पर्व, और रात्रि में कितने बजे से ग्रहण? 10:52:53 से लेके और 1:04 तक है। ग्रहण काल में स्पर्श काल, मध्य काल, मोक्ष काल तीन होता है। स्पर्श काल में स्नान करके और फिर जो गुरु मंत्र जो भी जप है किया जाए, अनंत गुणा फल होता है उसका ग्रहण काल में। फिर स्पर्श मतलब ग्रहण लग गया, छू दिया, और मध्यम में फिर स्नान करके, नहीं भी करो स्नान, बैठे रहो तो भी चलेगा, कर सको तो नहा लो, कपड़े चेंज करो फिर बैठ जाओ जप में। फिर मोक्ष काल में स्नान करके, तो ऐसे तीन बार स्नान हो जाता है, स्पर्श काल, मध्यम काल, मोक्ष काल, तीन बार स्नान हो गया। अब ठंडी में हो ग्रहण तो नहाने में लोग हिचकिचाते हैं, मुंबई में मौसम भी ठीक है, तो एक तो ये फायदा, दूसरे अनंत गुणा फल मिलता है ग्रहण काल में किए गए मंत्र जप पाठ हवन, हवन भी किया जा सकता है ग्रहण काल में, सब बहुत अच्छा माना गया। चंद्र ग्रहण काशी में महत्व है स्नान करने का, और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का महत्व है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगते हैं और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले। सूतक में यही होता है कि मंदिर आदि बंद हो जाते, पूजा नहीं हो सकती, बाकी आप पाठ कर सकते हो, महिमन पाठ आदि कर लो, भोजन आदि न करो तो अच्छा है, करना पड़े पानी पीना पड़े तो उसमें कुसा डाल दो, ये सब है नियम से किया जाए तो, बाकी तो जैसा हो ठीक है। तो ये संक्षेप में आप लोगों ने ग्रहण सूतक आदि क्या चीज है ये सुना, और ये ग्रहण तब से लगा जब से साक्षी के रूप में सूर्य चंद्र ने बता दिया कि राहु बैठा हुआ है देवताओं की पंक्ति में अमृत पीने के लिए, तब से राहु ने कहा हम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राहु ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात्। ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य जी लिखते हैं, जैसे राहु के द्वारा ग्रस्त होने पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी अभिभूत हो जाता है, उसी प्रकार से ये अज्ञान रूपी राहु ने हमारे ज्ञान के ऊपर जो ग्रहण लगा के रखा है, ये कैसे उतरेगा? बोले प्रेमपुरी में आओ, सवेरे आ गए स्पर्श काल, स्वाध्याय हो गया मध्यम काल, यहां से जब निकले तो मोक्ष काल। रोज ग्रहण लगता है, रोज ग्रहण उतारने आओ, और क्या चाहिए। तो इसीलिए प्रतिदिन दस शांति में से तो कुछ है दो तीन हम लोग शांति पाठ भी कर लेते हैं। हाँ वहां करे तो और अच्छा है, समुद्र में तो सारी नदियां आ रही है तो उसमें कर सकते हैं, किसी नदी किनारे या पवित्र जगह में कहीं भी बैठ के कर सकते, समुद्र किनारे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लघु वासुदेव मननम, प्रसंग ये चल रहा है आत्मा जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है वह अशुद्ध जैसा लग रहा है, बंधन में पड़ा हुआ जैसा लग रहा है और अज्ञान का प्रभाव अपने ऊपर है। शुद्ध का उल्टा होगा अशुद्ध, बुद्ध का उल्टा होगा अबुद्ध मतलब अज्ञान, और मुक्त का उल्टा होगा बद्ध। तो ये जो आत्मा के ऊपर लग रहा है सब आरोप है। शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा बद्ध आदि वाला कैसे हो गया, जिसका क्रम यहां गिना दिया है। आत्मा के दुखों का कारण है शरीर का होना। जैसे हम शरीर में आए तो जो व्यापक और अखंड है वह अव्यापक और सखंड हो गया, लगने लगा ऐसा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यय, ऐसा गीता 13वें अध्याय में आया है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय, यह जो परमात्मा है अव्यय, अनादि है, निर्गुण है। भागवत की कथा जब परीक्षित ने श्रवण किया सुखदेव जी के मुखारविंद से तो उसका नाम ही रखा निर्गुण श्रवण। वहां पर निर्गुण कथा नाम रखा है, जो सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा हुई है, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, उस कथा का नाम है निर्गुण कथा। निर्गुण निराकार परमात्मा में स्थापित कर दिया था सुखदेव जी जैसे विरक्त शिरोमणि गुरुदेव, साक्षात भगवान कृष्ण की ही स्वरूप है जो, ऐसे निर्गुण परमात्मा सगुण हो गया। अनादि होते हुए भी सादि वाला लगने लगा, आदि सहित। तो ये सब अज्ञान के कारण होता है। तो आत्मा के दुख का कारण शरीर, शरीर की प्राप्ति कर्मों से, कर्म में प्रवृत्ति होती है राग आदि से, राग आदि होते हैं अभिमान से। अभिमान नहीं करेंगे तो राग होगा ही नहीं। जब जब मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ये वृत्ति बनते ही हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए कह दिया राग आदि पूर्वक ही प्रवृत्ति होती है, तभी कर्म होते हैं। अभिमान पूर्वक राग होता है, और अभिमान होता है कब, जब हम विवेक नहीं कर पाते कि मैं कौन हूं। और ये अविवेक क्यों होता है, तो अज्ञान का ये सब प्रभाव है। उस अज्ञान के निवृत्ति के लिए जो क्रम बताया, अध्यारूपापवादाभ्याम तत्वज्ञ ज्ञातव्यस्तत्व निर्णय, अध्यारूपापवाद के द्वारा ही वह तत्व ब्रह्म जानने के योग्य है। उस ब्रह्म को जानने के लिए जब अध्यारोप और अपवाद के स्वरूप का वर्णन किया, ये भी आप लोगों ने सुना। ऐसे शास्त्र को पढ़ने के लिए पहले अनुबंध चतुष्टय की आवश्यकता होती है। वह चार प्रकार के अनुबंध चतुष्टय भी आप लोगों ने सुना, विषय क्या है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है और अधिकारी कौन है। फिर अधिकारी के जो लक्षण है उसको बोलते हैं साधन चतुष्टय संपन्न, अनुबंध चतुष्टय और फिर साधन चतुष्टय। आप ऊपर के ग्रंथ पढ़ोगे ना, अद्वैत सिद्धि ब्रह्मसूत्र आदि, इसमें ये सब बातें नहीं आती। ये सब शुरू की बातें हैं जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये वेदांत में प्रवेश करने का एक क्रम है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह अमुत्र फल भोग विराग, समाधि षटकम और मुमुक्षुत्वम च ये साधन चतुष्टय है। इसमें ये विचार हुआ कि ब्रह्म ही व नित्यम जगद अनित्यम, ब्रह्म ही नित्य है और जगद अनित्य है। ऐसा श्रुति स्मृति पुराणादिना स्वयमेव जायमानम ज्ञानम नित्या नित्य वस्तु विवेक। वैराग्य का स्वरूप क्या है? तो सामान्यतया तो कह दिया यह लोक और परलोक संबंधी फल की इच्छा का न होना ही वैराग्य है। यह श्रकचंदनादि विषय भोगो, इस लोक में सबको लगता है कि यहां श्रक ले लिया माला, गले में हार जो पहनते हैं ना हम लोग, ये बहुत आकर्षित करता है। इसलिए कई ऐसे परिव्राजक होते हैं कोई भी माला आदि रुद्राक्ष की माला भी नहीं पहनते हो, गले में फंदा हो गया, हाथ में घड़ी पहनना ये भी नहीं मानते, पुराने महात्मा लोग ये सब नहीं पहनते थे। रुद्राक्ष की माला तो पहन भी लेते हैं, बाकी जो सोने चांदी आदि की चैन है ये तो सर्वथा निषिद्ध है। श्रक चंदन आदि, चंदन से ले लेना चाहिए यहां पर इत्र आदि सुगंधी, लेकिन भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन किसी को आकर्षित करने के लिए भगवान को चढ़ाए बिना जो प्रसाद रहित है वह न लेवे तो अच्छा है, क्योंकि समय के अनुसार बदलाव भी करना पड़ता है ना, कहीं गलत अर्थ ना निकल जाए। तो श्रक चंदन आदि से जो जो ऐसे विषय आत्मा की ओर से हटाकर अनात्मा की ओर प्रवृत्त करे, उन उन विषयों से हटने का प्रयास करते रहना चाहिए। वैराग्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में ऐसा आता है, जब असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्त्वा की बात आई गीता 15वें अध्याय में, तो वहां असंगता रूपी शस्त्र आगे बताएंगे कि विवेक के अभाव में वैराग्य होना मुश्किल है, विवेक हुआ भी वैराग्य भी हो गया, तो आगे समदम आदि जो षटक हैं ये छह प्रकार की चीजें, इसके हुए बिना वैराग्य दृढ़ नहीं हो पाता। ये एक दूसरे के कैसे पूरक हैं, और समाधि षटक जिसमें हो भी गए हो, ऐसे भक्त लोग जो होते हैं उपासना करने में ईश्वर की पूजा करने में रुचि रखने पर भी ज्ञान की तरह वह प्रवृत्त नहीं हो पाते, उनके अंदर मोक्ष की इच्छा का अभाव देखा गया है। इसलिए मोक्ष की इच्छा भी होना जरूरी है, तब जाके साधन चतुष्टय संपन्न कहलाएंगे। विवेक पूर्वक वैराग्य, वैराग्य पूर्वक समाधि षटक, और समाधि षटक पूर्वक जो मुमुक्षा है, मुमुक्षुत्वं च दुर्लभम त्रयम एव एतत्। ये तीनों बड़े दुर्लभ माने गए, विवेक चूड़ामणि में आचार्य ने कहा है दुर्लभम त्रयम एव एतत्, एव कह करके बता दिया कि ये तीनों ही दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि तीन में से एक दो सुलभ हैं और एक कठिन होंगे, नहीं, तीनों ही दुर्लभ हैं। और वो क्या क्या है? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय। महापुरुषों की सन्निधि मिलना और मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, मनुष्य तो हम लोग हैं ही, लेकिन मनुष्यता का होना बहुत जरूरी है। ह्यूमन और ह्यूमिनिटी वाली बात है ये। मनु के संतान होने से हम लोगों का नाम पड़ा मनुष्य अथवा मानव, दनु के जो संतान हुए दानव, मनु के संतान का नाम पड़ा मानव मनुष्य। मनु महाराज ने जो संविधान बनाया, अपने पिता की जो आज्ञा माने वह पुत्र आज्ञाकारी होता है और पिता के लिए प्रिय होता है, उसके ऊपर पिता की कृपा होगी। मनु कौन है? तो स्वयंभू मनु भगवान के ही अवतार हैं। संसार की व्यवस्था कैसे चले उसके लिए जो संविधान बनाया वो मनुस्मृति के रूप में प्रसिद्ध है। और आजकल जो मनुस्मृति के अनुसार चलते हैं और जो लोग नहीं चलते उल्टा बोलते ये मनुवादी हैं। वहां मनुवादी इस अर्थ में नहीं है कि हम आपको नीचा दिखाएं, आपको छोटा समझें। वहां आत्म कल्याण के लिए कैसे प्रवृत्त हो, इसके लिए मनुस्मृति आदि का आधार लेना चाहिए। बाकी आज के युग में जो चीजें कठिन हैं उसमें कई जगह आपको वैसे ही ढलना पड़ेगा। अब मनुवादी कह करके हम पूरे ही शास्त्र का खंडन करें, उसकी बात न माने, तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मनुष्य होते हुए भी हमारे अंदर मनुष्यता नहीं आ सकती। मनुष्यत्व ये अपने आप में बड़ा दुर्लभ माना गया, और मनुष्यत्व जब आएगा तभी मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षु होना अलग चीज है, पहले तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती किसी को, और हो गई फिर उसके लिए दिन रात लगे रहना मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व कहिए और मुमुक्षुता कहिए, एक ही अर्थ है दोनों का। संस्कृत व्याकरण में त्वम और तल ये प्रत्यय होता है तब जाके बनता है मुमुक्षुत्वम अथवा मुमुक्षुता। ये जो चार चीजों में मुमुक्षुता का नाम लिया यह कितना दुर्लभ है, ये आचार्य विवेक चूड़ामणि में बता रहे हैं। जिसके अंदर मुमुक्षुता होगी वही आगे जाकर के भगवान जैसे अर्जुन को निर्दिष्ट कर रहे हैं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः तद विद्धि प्रणिपातेन। उसको जानने के लिए कैसे साधक के अंदर लक्षण होने चाहिए सब आगे इसमें भी वासुदेव यति जी बताएंगे, गीता और मुंडकोपनिषद का उदाहरण देंगे। तो सामान्यतया राग रहित हो जाना वैराग्य का यदि अर्थ किया जाए तो आत्मा के अतिरिक्त अनात्मा में होने वाले जो राग है उसका त्याग करना है। आत्मा में होने वाला राग जिसका नाम है आत्मरति, आत्मरति और आसक्ति दोनों में बहुत फर्क है। अनात्म वस्तुओं में जो रमण है इसका नाम है आसक्ति, और आत्मा में जो रमण है इसका नाम है आत्मरति। तो अनात्मा के त्याग, इसी को कहेंगे अनासक्त। चाहे भक्ति के मार्ग में चलो, कहीं भी चलो, अच्छा भक्ति ज्ञान की तो बात छोड़ो, दुनिया में जो हम लोग व्यवहार करते हैं, यदि किसी वस्तु किसी व्यक्ति देश काल आदि से चित्त यदि चिपक जाए तो ये हमें सुख देता है कि दुख देता है? दुख देता है। तो इसलिए हमेशा परिणाम के ऊपर ध्यान रखोगे ना कि आज जिसके साथ हम चिपक रहे हैं, और चिपकने के बाद उस वस्तु को जब वहां से हटाओ ना तो कुछ न कुछ लगता है कि इसको वहां से उखाड़ा गया है। यदि धीरे से लटका के रखो तो निकलने के बाद भी पता नहीं चलता है। पोस्टर है, बैनर है, कुछ भी ऐसे चिपका दो ना दीवार में, जब उसको उखाड़ोगे तो पोस्टर भी खराब होगा और जिसमें चिपकाया वो भी खराब होगा। तो चिपकना मतलब बहुत खराब चीज है, नहीं? चिपकू आंदोलन सुना है नाम? चिपकू आंदोलन ये जीपी है, ये पीएल है। जीपी मतलब गले पड़ने वाले। देखो आप लोग क्या सुन रहे हो, पीएल है, पिछलग्गू है। पीएल जीपी नहीं बनना अपने को। तो चिपकू आंदोलन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सब के सब ऐसे ही हैं। असक्ति रणभिश्वंग पुत्रदार गृहादिशु, इन्हीं चीजों में हम लोगों का चित्त अधिक से अधिक चिपकता है। अहम मम आदि का जो व्यवहार चलने लगता है फिर यहीं से, और इन्हीं सब के वजह से फिर सुनते हुए भी जिस अज्ञान को रोज हटाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वह अज्ञान का भूत ऐसा चढ़ा है। ये ग्रहण तो दिखता भी है उतरता भी है, लेकिन ये वाला ग्रहण दिखता तो है नहीं उतरता भी नहीं। यदि ये दिखने लग जाए तो जरूर उतारने की कोशिश करनी चाहिए। कौन सा? अज्ञान रूपी ग्रहण। ये ज्ञान के द्वारा ही हटेगा, कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो वैराग्य विगत राग विराग, जिसके अंदर से राग निकल गया, तो किस संबंधी राग निकला? अनात्म वस्तु संबंधी राग हट गया और आत्म संबंधी राग बढ़ गया, ऐसा अर्थ करना है। सर्वथा राग रहित नहीं, राग तो है लेकिन अनात्मा का राग न होकर अब किसका राग है? आत्मा का। इसलिए इसका नाम होगा आत्मा राम, आत्मरमण, आत्मरति। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्माराम, ये सब प्रयोग किया गया है शास्त्रों में। और अनात्मा में होने वाली जो रति है, इसी का नाम है आसक्ति। तो जिन जिन वस्तुओं से हम लोग अपना संबंध जोड़ते हैं, इससे हमारी अनात्म भावना दृढ़ होती है। यदि आत्मा की तरफ बढ़ना है तो इन चिपकने वाले चीजों से तो फिर रहे कैसे? तो पद्म पत्रम इवाम भसा। ऐसा भी नहीं कि राग नहीं है तो प्रेम नहीं करना है, मुंह लटकाना है, ऐसा नहीं। जितना बड़ा ज्ञानी होगा उसके अंदर उतना ही भोलापन होगा। क्योंकि किस बात का गुस्सा, क्रोध कब आता है? क्रोध तो वो करे जिसको ज्ञान नहीं है। जब हमें कोई अपेक्षा ही नहीं है तो क्रोध का मतलब ही नहीं होता है। क्रोध तब होता है जब हमें आपसे कुछ अपेक्षा हो, तो क्रोध भी नहीं होना चाहिए। ये सब फिर निषेध किया है सबका। तो लोग समझते हैं राग नहीं है, अरे हमें अब किसी से कोई लेना देना नहीं, ये सब नहीं बोला जाता। लेना देना सब है, जब तक प्रारब्ध है शरीर में हो, जो लोग मिलेंगे प्रेम से मिलो, प्रेम से बात करो। वैराग्य का कोई उल्टा अर्थ करने लग जाए, इसके लिए पूरी तरह से शास्त्र में इसका विचार किया गया। अब ये वैराग्य कैसा है? स्वाभाविक वैराग्य है, नेचुरल, अथवा बनावटी वाला वैराग्य? हाँ, वैराग्य का भी स्वरूप अलग अलग है ना। अब जैसे लोग बोलते हैं कि वेदांत कौन पढ़े, बोले जिनके मुंह में दांत नहीं। हाँ, ऐसे वेदांत तो नहीं बनना। वेदांती जब सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, तो क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे? शरीर में समर्थ होते हुए जैसे हम बुढ़ापे के लिए जवानी में चिंता करते हैं कि अभी कमाएंगे तो बुढ़ापा हमारा सुखमय निकलेगा, हाथ में दो पैसे होंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ये तो हम लोग बहुत सोचते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि जब चले जाएंगे यहां से तब क्या होगा? बुढ़ापा तो चलो जी, आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, सब आपने व्यवस्था कर ली है, बैंक बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन है, कुछ भी है, इंटरेस्ट आ रहा है, गुजारा चल रहा है आपका। लेकिन ये बुढ़ापा भी तो हमेशा नहीं रहेगा ना, ये भी एक दिन चला जाएगा, फिर क्या काम में आएगा? तो जो धर्मानुगो गच्छति जीव एक, जो कमाया है आध्यात्मिक संपत्ति जो अपने पास है, वही साथ में जाएगी, बाकी तो कुछ जाना है नहीं। इह स्रक चंदनादि विषय भोगो अमूत्र अप्सरह स्त्री विषयादि। स्वर्ग में होने वाले अप्सरा आदि का सुख मिले इस विषय की इच्छा न होना। और इस लोक में स्रक चंदनादि का नाम ले लिया, इन दोनों में होने वाले जो दृष्टि है इसको अनित्य समझ करके छोड़ने का प्रयास करें। कितने भी हम संसार के वस्तुओं को भोग लें, एक न एक दिन ये सब छूट जाएंगे, छोड़ना पड़ेगा। यदि ये बार बार मन में इसकी आवृत्ति चलती रहेगी तो आदौ अंते चयन नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। मांडुक्य कारिका, जो आदि में भी नहीं है, अंत में भी नहीं है, इसका मतलब मध्य में होते हुए भी वो नहीं ही है, क्योंकि पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहना है, तो मध्य में जो दिख रहा है ये भी नहीं के समान है। ऐसी दृष्टि जो बनाता है उसके मन में मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय होता है। बस अनात्म वस्तुओं के प्रति मिथ्यात्व भावना को दृढ़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो पहले नहीं था आगे भी जो नहीं रहने वाला है, इसका मतलब वर्तमान में भी वह नहीं के समान है। प्रतीति तो है, सब कुछ व्यवहार भी चल रहा है, लेकिन मानना यही कि जो पहले नहीं था, जो आगे नहीं रहने वाला है, तो अभी भी नहीं है। अब आगे जो कहा था, ये लघु वासुदेव मननम में ये बात आई कि वस्तुओं के प्रति त्याग की भावना दृढ़ करनी हो तो कैसे दृष्टि बनावे। एक तो अशोभन बुद्धि करने के लिए कहा गया है, संसार में जितने भी वस्तु है ना, उसमें कौन सी बुद्धि करें? अशोभन बुद्धि। शोभन बुद्धि होते ही राग होता है, वैराग्य नहीं होगा। अशोभन बुद्धि का मतलब ये सब हमारे लिए शुभ नहीं है, कल्याण के हेतु नहीं है, यही अशोभन बुद्धि। कहते स्ववांताशन मूत्र पुरीषादिवत, कुत्ता यदि खा करके उल्टी करे तो वह हमारे लिए कितना घृणित होता है। कुत्ते की उल्टी बता दिया यहां, अपनी उल्टी तो छोड़ो, अपने उल्टी को ही हम लोग नहीं देख पाते, कुत्ते की उल्टी तो और भयंकर घृणित हुआ। तो स्वान तो कुत्ते के द्वारा वमित उल्टी किया हुआ, और मूत्र पुरीषादिवत, जैसे मलमूत्र आदि में कभी भी ये वस्तु अच्छी है ये दृष्टि हम लोगों की नहीं होती, हमेशा इसमें घृणा की भावना रहती है, ऐसे ही संसार के विषय मलमूत्र और कुत्ते के उल्टी के समान, उल्टी किए हुए वस्तु के समान है। ऐसी भावना जब होगी तब जाकर के ये भाव दृढ़ होगा। स्ववांताशन मूत्र पुरीषादिवत तत्र वैरस्यम, विरस रस रहित हो जाना, जैसे रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब तक उस परम रस की प्राप्ति न हो जाए तब तक सामान्य रसों में तो लगाव रहता ही है। ये है यह अमूत्र अर्थ फल भोग विराग, ऐसी दृष्टि बनाने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ेगा। और सबसे पहले बाहर के वस्तुओं को तो छोड़ो ना, अपने शरीर को ही देख लो, जरा से चमड़ी उधेड़ो, मांस दिखता है, भोजन के समय में मक्खी ना भिन भिनाए, ढक के खाना पड़ता है, सवेरे सो के उठते हैं आंख में कीच, कान में वो बड्स करते यहां से गंदगी, नाक में उंगली करो यहां से कीच, मुंह से थूक के निकालो ये कफ बलगम, शरीर से पसीना, कहीं से मलमूत्र, कहीं से रगड़ के निकालो तो मैला निकल रहा है, तो कोई भी इसमें अच्छी चीज है क्या? तो अपने शरीर को ही देखें तो इससे अपने आप वैराग्य होता है। उपयोग करना, व्यवहार करना अपनी जगह ठीक है, सारे वस्तु मैं ही खा लूं, सारे कपड़े हम ही पहन लें, ये हो भी नहीं सकता है। और यदि ये मन में आया तो अशांत हो जाओगे, और अशांत चित्त से आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता। मन को पहले शांत करने का यदि अभ्यास करना है तो इन चीजों को अपनाना पड़ेगा। यही विचार कीजिए कि हमारे जितने अपने ये हम लोगों के पेट के जो लीवर है ना, अंतड़ी, कितने सेंटीमीटर के है ये? कल भोजन कर रहा था तो मैं सोच रहा था भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, हफ्ता में एक दिन भूख लगती ना बहुत अच्छा होता, या एक ही टाइम खाने के बाद दूसरे टाइम भी भूख नहीं लगती तब भी ठीक था। सवेरे से शाम तक डाले जा रहे, कितना बड़ा हवन कुंड है, स्वाहा स्वाहा होता ही रहता है इसमें, और इसी में सब परेशान है। हवन कुंड का एक तो किचन में गए चूल्हा में, वहां पूरा प्रज्वलित किया, हवन सामग्री तैयार हुई, और फिर इसमें जो बैठे हुए देवता हैं उनके लिए फिर हवन दो, स्वाहा स्वाहा बोलो। तो हफ्ता में या महीने में या साल में एक बार भूख लगती तो मुझे नहीं लगता लोग इतने परेशान होते। अभी भी रोटी कपड़े का ही नाम लेते हैं लोग, रोटी कपड़ा कमाना है खाना है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। तो शरीर में जब देखते हैं तो बाकी चीजों में फिर अपने आप राग हटने लगता है। शरीर में यदि राग बुद्धि दृढ़ होगी तो बाकी चीजों में भी, क्योंकि शरीर की आवश्यकता के लिए तो वस्तुओं के प्रति लगाव होता है ना, ये काम में आएगा, ये काम में आएगा। तो सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा इति सम आदि षटकम, ये नाम आप लोगों ने सुना था। तो शमन करने का तरीका क्या है? मनोनिग्रह सम तो सुन लिया, अब ये आचार्य सावधान कर रहे हैं कि यदि मन में शमन लाना है, शांति लाना है, तो श्रवण आदि व्यतिरिक्तेभ्यो निवर्त्य आत्मनि एव श्रवणादि विषये मनसस्थापनम्। मन को कहां स्थापित करें? मन तो कहीं न कहीं जाएगा ना, इसको एक क्षण भी खाली रख नहीं सकते। तो समो नाम श्रवणादि व्यतिरिक्तेभ्यो, क्या श्रवण कर रहे हैं हम लोग? तो बाहर के वस्तुओं को जो सुनने की इच्छा है, अर्थात अनात्म संबंधी चर्चा को सुनना छोड़कर आत्मनि एव आत्मज्ञान के संपादन के लिए जो चर्चा हो उसको सुनने में, ऐसे सुनने वाले विषयों में मन को स्थापित किया जाए तो यही समता की प्राप्ति है। मान लीजिए घर से लोग चल के यहां तक आते हैं, जैसे भी आते हैं, पैदल आते हैं, गाड़ी से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, कोई पूछे वहां क्यों जाते हैं, बोले मन को विक्षिप करने के लिए जा रहा हूं, कहेंगे फिर तो घर में रहो ना, घर तो काफी है विक्षिप करने के लिए। यहां हम लोग इसलिए आते हैं जब एक घंटा दो घंटा कुछ कर लेते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमने कुछ किया है, और ये जो आपने किया है किसी के लिए उपकार नहीं किया है, ये अपने ऊपर अपना उपकार है। क्योंकि जब चार प्रकार के पुरुषार्थ में नाम गिनाया था ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष का क्या नाम रखा? परम पुरुषार्थ। बाकी तो सब पुरुषार्थ है, भोजन बनाने वाला जब किसी को खिलाता है और उसके भोजन की प्रशंसा होती है तो उसको भी खुशी होती है कि मेरा भोजन बनाना सफल हो गया। वक्ता को यदि ऐसा लगे कि हमारी बात श्रोता समझ गए तो उसका बोलना भी सफल हो जाता है, नहीं तो फिर वक्ता की जगह बक्ता हो जाता है, सुना है? हाँ, जो बक बक करे उसका नाम बक्ता, और जो शास्त्र के अनुसार बोले वो हो गए वक्ता, और पार्टी आदि का बयान दे उसका नाम है प्रवक्ता, पार्टी प्रवक्ता। हाँ, यहां पर है आध्यात्मिक प्रवक्ता। तो यहां जब हम सुनते हैं सुनाते हैं, हम अपने को भी लगता है कि एक संत जी कहीं गए थे किसी घर में, तो कहा भाई सत्संग कर लेते हैं, घर वाले को पता नहीं था सत्संग क्या चीज है, तो बोले कुछ भजन सुनाओ, किसी को कहा तुमको गीता याद है तो वो बोलो, बच्चों को कहा भाई कर्पूर गौरम सुनाओ। तो एक जो वातावरण ये बनता है, उन्होंने कहा कि हम आपके घर में रुके हैं, यहां के जो अन्न खा रहे हमारे लिए भिक्षा है, और इसको हम ऐसे नहीं पचा सकते जब तक कुछ भगवान की चर्चा न कर ले, तो सत्संग किए बिना किसी का अन्न भी खाना अच्छा नहीं। इसलिए महात्मा लोग प्राय किसी घर भी जाते हैं तो भोजन के बाद या भोजन के पहले कुछ सोचते हैं कि भगवत चर्चा हो जाए। जिज्ञासु लोग जो होते तो पहले कहते महाराज जी कुछ सुनाइए बताइए, और जहां संस्कार नहीं पता नहीं तो महात्मा को अपनी तरफ से ही सुना देना चाहिए कि भाई आओ कुछ आप लोगों को बता देते हैं, सुना देते हैं। कहने का मतलब है हमने भी कुछ किया तब जाके वो भिक्षा हमें पचेगी, और ऐसे गए खा के आ गए तो वो तो जैसे भिखारी को जो अन्नदान देने वाली बात हो गई। इसलिए आश्रमों में जब भी भोजन होता है गीता के 15वें अध्याय का पाठ करते हैं, यही सत्संग है, चर्चा हो गई, भगवत चर्चा हुई। इसलिए एक अपने आश्रम में एक जगह है, रात्रि में ईशावास्य उपनिषद का पाठ होता है भोजन के समय, और दिन में 15वां अध्याय, नहीं रात्रि में 15वां अध्याय, दिन में ईशावास्य उपनिषद, और प्रातःकाल जलपान में प्रातः स्मरण स्तोत्रम वो करते हैं। होता क्या है, इससे हमारी ये भावना बनती है कि जो भी मैं ले रहा हूं भगवत प्रसाद है, और जब आपके हर चीज में ये बुद्धि है, नया कपड़ा आया लगता है पहले भगवान को चढ़ाऊं फिर प्रसाद ले लूं, भोजन बनाया पहले भगवान को चढ़ाऊं, फल लाए पहले भगवान को चढ़ाऊं, ये सब एक साधना करने का तरीका है। भगवान को आपके कपड़े की आवश्यकता नहीं, हमारे फल की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब जब हम करते हैं तो हमारी भावना कितने पवित्र होती चली जाती है इससे पता चलता है। तो श्रवणादिभ्यो व्यतिरिक्तिभ्यो व्यतिरिक्तेभ्यो अर्थात अनात्म वस्तुओं के श्रवण को छोड़कर आत्म संबंधी जो श्रवण किया जाएगा उसी से मन शांत होगा। सम दम आदि जो गिनाया है ना, इसमें समता कैसे प्राप्त करेंगे इसके लिए उपाय बता रहे हैं यहां पर कि समो नाम श्रवणादि व्यतिरिक्तेभ्यो निवर्त्य आत्मनि एव श्रवणादि विषये मनसस्थापनम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायण। ये होना चाहिए तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। जैसे कोई अच्छे कलाकार फिल्म आदि बनाता है तो उसको कितना अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात चल रही है हम लोगों का जो प्रतिदिन ये होता है सवेरे, ये क्या है बोले इसका नाम है ब्रह्माभ्यास। ब्रह्माभ्यास का मतलब तत्चिंतनम तत्कथनम, उसी के बारे में चिंतन करना, उसी के बारे में कथन करना, और अन्योन्यम तत् प्रबोधनम। जब मिलते भी हैं आपस में तो यही सबसे पहले पूछना चाहिए, आपका मन शांत है, अपने स्थिति में हो। जब पूछा जाता आप स्वस्थ हो तो स्वस्थ का अर्थ क्या होता है, स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ। जब हम अपने आप में स्थित हैं इसी का नाम स्वस्थ है। अच्छा ये तो हो गई मन की बात, शरीर की बात भी देख लो आप। जब सिर दर्द होता है तो इसका मतलब शरीर से सिर बाहर हो गया, हुआ कि नहीं। जो चीज शरीर से बाहर हो जाए उसमें ध्यान जाएगा, हाथ में दर्द होगा ये भी शरीर से बाहर हो गया, अब इसी में ध्यान जा रहा है। जब न शरीर में मन है, सिर हाथ पैर कहीं पर कोई वेदना नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो एक तो लौकिक स्वस्थता का लक्षण तो यही है कि मन आदि से लेकर जितने भी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर है इसमें कहीं पर भी कोई वेदना नहीं है। और आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर में पीड़ा भी है, मन भी हो सकता है किसी बात से विक्षिप्त हुआ हुआ है, फिर भी जब आप स्वस्थ हो पूछा जाता है तो इसका मतलब है कि मैं स्वस्थ हूं। क्योंकि पंचदशी में आता है ना, मूर्छा भी क्यों ना आ जाए, गिरते हुए पड़ते हुए हमेशा वह अपने स्वरूप में ही रहता है, उसे नहीं तो गिर जाए तो उतने देर के लिए क्या आत्मा बाहर निकल गया क्या, ऐसा तो नहीं होता है। एक बार जिसने इस स्वरूप की प्राप्ति कर ली, बाकी प्रारब्ध के अनुसार जितने भी वातावरण आ रहे हैं सामने सबको झेलते हुए भी अपने स्वरूप से वह कभी अच्युत नहीं होता, अच्युत नहीं होता। जैसे भगवान का नाम अच्युत है ना, स्वस्वरूपात न च्यवते इति अच्युतः, जैसे भगवान कभी भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, ऐसे ही जो ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, बाकी जैसा वातावरण आया सामने गुस्सा करना पड़ा कर दिया, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। हम लोग गुस्सा तो नहीं करते लेकिन मन ही मन सोचते हैं जब आएगा समय तब बताऊंगा इसको। अब उसके लिए क्या अगले रक्षाबंधन की प्रतीक्षा करोगे क्या, आज के दिन निपटाना निपटाओ नहीं तो उसको दिमाग से निकाल दो, ऐसा होता नहीं। तो आत्म संबंधी श्रवण में मन को स्थापित करने से समन की प्राप्ति होगी। दूसरा नाम रखा दमो नामो ज्ञान कर्मेन्द्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह तो कहा ही है सामान्यतया, लेकिन दोनों का नाम ले लिया, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय संबंधी जो हमारी प्रवृत्ति है उसको निग्रहित जब करेंगे तब इसका नाम पड़ेगा दमो। नहीं तो दम का उल्टा करेंगे तो क्या बनता है, मद, इसी से फिर मद चढ़ जाता है। हमारे यहां जितने भी ये शब्द है ना संस्कृत में तो अनेक अर्थ बन जाते हैं। देखो ना भाई, ये मन है, मन में एक नकार आगे जोड़ दो तो बन जाता है मनन। हां, इधर जोड़ोगे तो बन जाएगा नमन। नमन और मनन, इन दोनों से रहित होगा तो वो है केवल मन। और मन पुराने लोग जानते हैं कितने किलो का एक मन होता है,
40 शेर का
एक मन। अब ये वो तो तब भी एक निश्चित है कि 40 शेर से ऊपर होगा तो भी उसमें एक मन नहीं कहा जाएगा, कम होगा तो भी एक मन नहीं होगा। लेकिन यहां पर कितना वजन है, ये जो मन है हम लोगों का, ये कितने शेर का है? आज तक किसी तराजू में तोल के देखा? 600 शेर, 600 ग्राम। ये कथा दुनिया में सब लोग सुन रहे हैं, वो लोग फिर निश्चित कर लेंगे कि हम लोगों का मन 600 ग्राम का है। 600 ग्राम नहीं, शरीर में तो मन है ही, मन तो कहां नहीं, चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन इस मन का वजन जो है ना, जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। तोलेंगे ना ग्राम, न किलो, न क्विंटल, कुछ भी नहीं है। लेकिन है ये बहुत भारी, और इसको हल्का यदि करना है तो यहां आना पड़ेगा। जब आप सुन लेते हो ना इतनी देर, माला जपोगे, पाठ करोगे, कथा सुनोगे, पुस्तक पढ़ोगे, तो लगता है कि हमने कुछ किया है। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रवर्तितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनों से कभी भी प्रमाद न करे। दमो नाम ज्ञान कर्मेन्द्रिय निग्रह। अब जो उपरति की बात है, कल तो सामान्यतः अर्थ बता दिया था कि व्यवहार के प्रति उदासीन हो जाना, व्यवहार में आग्रह बुद्धि नहीं रखना, एक तो ये सामान्य अर्थ है ही उपरति। दूसरा नाम है उपरति का मतलब संन्यास, उपरतिर नाम संन्यास। ये लघु वासुदेव मननम में उपरति का अर्थ किया। उपरतिर नाम संन्यासो, कौन सा संन्यास? निष्काम कर्म अनुष्ठानम और व्यवहार लोपो वा, व्यवहार ही समाप्त हो जाए, एक तो ये उपरति है। जैसे महापुरुष लोग पहले वाले जो होते थे और अभी भी हैं, जिनका शास्त्र आदि में ही लगाव है, वो व्यवहार में बहुत कम पढ़ते हैं। हम लोग जैसे फॉर्मेलिटी करते हैं ना, कैसे हो, क्या हो, सब कुछ। अब एक महात्मा जी थे, उनके साथ दूसरे महात्मा उनके पास गए मिलने के लिए, तो उनके साथ कोई एक सदगृहस्थ सज्जन भक्त भी थे। तो महात्मा ने आपस में ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, कैसे हैं स्वामी जी, सब ठीक ठाक है, बातचीत हो गई। तो जो सज्जन गए थे उनके लिए, वो महात्मा ने स्वयं कहा, स्वामी जी हमारी आपकी तो बात हो गई, इनका परिचय आपने नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा, जब आपके साथ आए हैं तो अच्छे ही होंगे ना। हाँ, अच्छे आदमी के साथ क्या होगा, अच्छा ही आदमी टिक पाएगा, खराब आदमी तो ना, या तो वो नहीं स्वीकार करेंगे या वो नहीं रह पाएगा। जो गलत आदमी होता है ना, उस अच्छे आदमी के साथ टिक नहीं सकता, अथवा अच्छा आदमी गलत आदमी को साथ नहीं दे सकता। ये तो तभी हो, तालमेल बैठता है, जब दोनों एक जैसे हो। तो कहा, यदि आपके साथ हैं तो अच्छे ही होंगे ना, इसलिए अलग से हमें पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कई बार हम लोग पूछ भी लेते हैं, तो इतने निरपेक्ष होते थे व्यवहार में। अभी तो आप क्या करते हैं, क्या काम धंधा है, ये पूछते भी चले जाते, मन ही मन ये वृत्ति चलने लगती कि इससे क्या लाभ उठा सकते हैं हम। यदि लगा कि आगे तक गाड़ी चलने वाली है तब तो ठीक है, नहीं तो बोले इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तभी तो हम हालचाल भी पूछते हैं तो फायदा के पहले ही सोचते हैं कि इससे मिल करके। आजकल लोग बोलते, भाई घुमा करो, लोगों से मिला करो, बहुत फायदा होता है। हाँ, नेटवर्क फैलाओ। तो ये एक कोई पुराने हैं, कोई किसी फिल्म को डायलॉग सुनाते हैं हमेशा, और बातों बात में बोलेंगे, स्वामी जी आपसे मिलकर लाभ ही लाभ है। तो हमने कहा ये क्यों बोलते हैं, ये कोई 420 फिल्म निकली थी क्या, श्री 420 राज कपूर जी का, हाँ उसमें शायद ये कोई डायलॉग है। तो उन्होंने हमको बताया, कोई उस समय तो हम लोग थे भी नहीं, थे रहे होंगे और कहीं होंगे जब ये फिल्म बनी थी। तो अभी उस सुनाते हैं कभी भी बातों बात में, बोलते दुनिया में जितने भी लोग साइकाइट्रिस्ट थे, अभी रिटायर हो गए, बड़े मस्त हैं, बोले दुनिया में लोग सपने बेचते हैं और सपना बिकता कहां है, जहां उसके ग्राहक होते हैं। हाँ सपना तभी तो हम बेच पाएंगे। अब यहां तो अध्यात्म की बात है, यहां तो पहले से सपने में पड़े थे, अब किसके लिए आए, जगने के लिए आए, यहां अब सपना बेचने की बात नहीं हो सकती। तो आपसे मिलकर लाभ ही लाभ है। जब भी हम मिलते हैं तो व्यवहार में प्रायः लोग एक दूसरे का परिचय करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे काम का है या नहीं। यहां तो कह दिया व्यवहार लोप उपरति, कोई आग्रह बुद्धि यही नहीं किससे लाभ है कि नुकसान है, जो है ठीक है। और निष्काम कर्म अनुष्ठानम, कर्म तो कर ही रहे, अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन कैसा, निष्काम भाव से। जो गीता में काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, जो वहां संन्यास का नाम लिया वही उपरति का स्वरूप है। तितिक्षा नाम, ये सब अभी चलेगा, समाधि षटक और मुमुक्षुता, सोचते इसका विचार फिर कल ही करें, भी लंबा चलेगा थोड़ा। तो आत्मा के दुख के कारण शरीर, उसकी प्राप्ति कर्म से, कर्म की उत्पत्ति राग से, राग होते अभिमान से, अभिमान अविवेक से, और अविवेक अज्ञान से। अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही अध्यारूप और अपवाद की प्रक्रिया से जब वह ज्ञात होगा, ब्रह्मात्मिकत्व की वृत्ति बनेगी, तब जाकर के चार प्रकार के पुरुषार्थों में जो मोक्ष परम पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति हो सकती है। जिसके लिए ये लघु वासुदेव मननम श्रवण करने में हम लोग प्रवृत्त हुए हैं। तो आगे का विचार फिर कल करेंगे।